तब कह सकते हैं कि अल हकीम जल्ला जलालुहू ने तमाम मखलूकात को किसी न किसी हिकमत के तहत पैदा किया। सवाल यह कि जमीन को पैदा करने की हिकमत क्या है? अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी से जमीन का इतना प्यारा बिस्तर बिछा दिया जो ना इतना नरम कि हम इसमें घुस जाएं, वरना तो हम पाँव रखते तो अंदर जाते। वो कभी बच्चों के लिए लगे होते हैं ना प्लेग्राउंड्स में ऐसे ही फॉर्म के, और ना इतना सख्त के जमीन पर पाँव रखे तो पाँव का तलवा ही चटक जाए। और हमारे लिए जिंदगी की तमाम जरूरियात और खाने पीने के सामान के लिए जमीन को खजाना बना दिया। पीछे भी बताया था ना कि जमीन हमारा गोदाम है, इसके अंदर अल्लाह ने रखा हुआ है। आसमान पैदा करने की क्या हिकमत है? आसमान क्यों पैदा किया अल्लाह ने? आप देखिए कि कायनात एक मकान की तरह है और आसमान इसमें बतौर छत के है और जमीन फर्श के तौर पर है। सितारे आसमान में रोशनी के लिए चिरागों की तरह हैं। और चिरागों का काम क्या होता है? रहनुमाई, रोशनी। अल्लाह ताला ने ये सब कुछ कर करा के आपको मुझे बता दिया कि कोई चीज़ निकम्मी नहीं। कुरान पाक में कितना तज़करा आता है जमीन का, आसमान का, सूरज का, चांद का, सितारों का। तो फिर अल्लाह ताला ने इन सब चीज़ों को हिकमत से पैदा किया। सवाल लिखिए कि सूरज पैदा करने की क्या हिकमत है? सुबह सुबह उठ के सूरज साहब आ जाते हैं और हमें भी उठना पड़ता है, तो सूरज का क्या काम है कि सूरज की रोशनी से रात और दिन का क्याम है? अगर ये ना होता तो दुनिया दरहम बरहम हो जाती। अल्लाह सुब्हान तआला कैसे इन चीज़ों को रखते हैं। नेक्स्ट थिंग सोचिए, सितारों को पैदा करने की क्या हिकमत है? आज के बाद हर चीज़ की हिकमत सोचिएगा। तो अल्लाह ने आसमानों को सितारों की जीनत से मुजयन किया, शयातीन को मार भगाने का जरिया, रुजू मल्ले शयातीन जयन्नत समात दुनिया। और इसी तरह जो वही इलाही इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह की तरफ से आती है तो शयातीन की मुदाखलत से बचाने का काम सितारों से ले लिया। और इसी तरह रात के अंधेरों में ये सितारे समंदर में सफर करने वालों को राह दिखाते हैं। आज भी जहाज और शिप जो हैं वो इन्हीं सितारों के जरिए आते हैं। फिर अगला सवाल लिखिए कि समंदर पैदा करने की क्या हिकमत है भाई? जी, अल्लाह ने समंदर को पैदा फरमाया। क्यों? क्योंकि इसके बहुत से फायदे हैं, मुनाफे, फवायद। इंसान इससे अपना रिस्क भी लेता है और तिजारत के काम भी आता है। फिर इसी तरह से मिट्टी के पेड़ से जाहिर होने वाली चीज़ों में क्या हिकमत है? आप देखिए, मिट्टी में से सब्जियां निकलती, मादनियात निकलते, गैस निकलती, पानी निकलता, चश्मे फूटते। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वही है जिसने आसमानों से पानी उतारा और उसके साथ जमीन को सैराब किया। अलकीब ने तमाम सब्जियों और फलों को एक खास अंदाजे और मकदार में उगाया। बाज़ दफ़ा जमीन से उगने वाली जड़ी बूटियां दवा के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। तो ये अल्लाह सुब्हान तआला की सुन्नत है, वो कहाँ कैसे रखे? तो फिर एक और बात लिखिए जो बड़ी अहम है, और वो क्या है कि हम पे कभी कभी जिंदगी में आजमाइशें आ जाती हैं। फिर उसमें क्या हिकमत है भाई? चलें भाई, आप कहते हैं किसी को बुरा ना कहो, हम नहीं कहते, मान लेते हैं आपकी बात। तो फिर ये बताएं, बीमारियां क्यों आती हैं, आजमाइशें क्यों आते, बच्चों के गम क्यों लगते, इंतकाल क्यों हो जाता, कारोबार क्यों डूब जाता, जो हमारी छोटी मोटी चीज़ें दुनिया में होती हैं और जिसको हम इतना बड़ा करके अपनी सारी ज़िंदगी ज़ाया कर लेते, बेकारियात में घुसते हैं। तो याद रखिए, आजमाइशों में पहली हिकमत क्या है कि बंदों के गुनाहों का कफ़ारा, कफ़ारा पिछले ज़िंदगी के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। फिर बंदों को सवाब दिया जाता है, सब्र दिया जाता है, बड़ी आजमाइश पर सब्र, सवाब भी उतना बड़ा। गुनाहों को दूर करने का ज़रिया, बंदे खुद को अल्लाह से जोड़ना चाहते हैं, वैसे नहीं जुड़ पाते तो अल्लाह इन चीज़ों में ले आते हैं। ऐसे वाक़यात आपके मेरे लिए ईमान के इजाफे से ज़्यादा बढ़कर और कुछ नहीं होते। तारीख भरी पड़ी है इन सब वाक़यात की, कैसे लोग तकलीफ़ों और दुखों में अल्लाह के साथ जुड़ते हैं। फिर ज़रा अल्लाह बंदे को गैर अल्लाह की मोहब्बत से पाक करना चाहता है, मुसीबतों के ये फ़ायदे हैं। और जितना ज़्यादा आप इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं है। अल्लाह सुब्हान तआला की हस्ती आपके मेरे लिए किसी काम में शर नहीं चाहती। इसी तरह के कुछ वाक़यात हैं, मैं आपको जो भी वाक़या सुनाऊँ, और ख़ास तौर पर हज़रत सुलेमान का भी सुनाया इसी तरह एक अरबिक बुक से भी, तो उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और इंसानी वाक़यात हैं। आप जानते हैं कि कुरान की आयतों के नंबर और अहादीस के रेफरेंस के बगैर बात नहीं की जाती, लेकिन जिस तरह हमारे पास ये चीज़ें एक ऑथेंटिक सोर्स है, इसी तरह कुछ लोगों की दुआएं, उनके वाक़यात, ये इनफॉर्मल चीज़ होती है। आप ऐसी दुआओं को, ऐसी वाक़यात को आगे बगैर किसी वजह के आगे ना करें, सिर्फ वो बातें आगे करके इल्म और कुरान सुन्नत से ना जोड़ें, क्योंकि मेन रिसोर्स हमारे लिए तो वही है। तो इसी तरह के कुछ वाकयात हमें तारीख की किताबों में मिलते हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने लोगों को मुख्तलिफ हालात में डाला, मुख्तलिफ चीज़ों में उनको डालकर फिर उनको हिदायत दी, किसी को हिदायत दी, किसी को ईमान दिया। और हम सब भी इन बातों को सिर्फ इस सोच के साथ सुनते हैं कि कैसे अल्लाह ताला शर में से खैर निकालता है। तो इसमें एक वाक्य आता है मक्खी और मतकब्बिर बादशाह का। कहते हैं कि एक बादशाह था, बड़ा ही तकब्बुर वाला था, तो मक्खी बार बार उसकी नाक पर आकर बैठ रही थी। कहने लगा कि अल्लाह ने ये मक्खी पता नहीं क्यों पैदा की है। अब उसके दरबार में एक बुजुर्ग भी थे। बुजुर्ग ने इस बादशाह से कहा कि ये बताओ कि ये मक्खी का क्या फायदा है। तो उसने कहा कि तुम जैसे जाबिर और मतकब्बिरों के दिमाग दुरुस्त करने के लिए। अल्लाह अकबर, तुम इतने आजीज हो कि अगर तुम्हें एक मक्खी सताना चाहे तो तुम्हारे अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं कि अपने आप को इसकी तकलीफ से बचा लो, तो तुम क्या बड़े बनते हो। और मुझे पता क्या याद आ रहा है इस वक्त, सूरत हज की आयतें, बिल्कुल एंड है सूरत का, दाउ फत्तालिबु वल मतलूब। अल्लाह ने मक्खी की मिसाल कुरान में दी, बल्कि उस दौर के भी नासमझों ने मजाक उड़ाया था कि ये क्या बातें हैं, मक्खियाँ और मच्छरों की मिसालें। तो अल्लाह सुबहाना तला कहता है कि मैं इससे भी नहीं शर्माता। तो याद रखिए ये जो मुहावरा है ना कि नाक पे मक्खी ना बैठने देना, तो वो भी यही बात है। और अल्लाह ताला हिकमतों से खाली काम नहीं करते। फिर इसी तरह से आप देखिए कि कोई नकम्मा नहीं कुदरत के कारखाने में। इमाम राजी ने तफसीर कबीर, और ये बड़ी मारूफ किताब है अरबी की, क्योंकि हमारे पास तफसीरें अभी उर्दू में सारी नहीं है, तो कभी कोई ऐसी अनयूजुअल बात सुने तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमने आज तक नहीं पढ़ी, हमने तो 6 दफ़ा कुरान पढ़ा। तो मुमकिन है, कौन दावा कर सकता है हम में से कि हमने सब कुछ पढ़ा। तो आप आज भी तफसीर कबीर खोलिए, एक तफसीर इब्ने कसीर है और एक तफसीर कबीर है। ये तफसीर कबीर में इमाम राजी का वाक्य है, और आप जानते हैं इमाम राजी की एक तफसीर है जिसमें नुक्ते ही नहीं है। अभी तो खजानों के खजाने अरबी में बंद है। तो बहरहाल बहुत बड़े माहिर थे, इल्मे कलाम इनका शुगल था। अलामा इकबाल ने भी कहा ना, ना राजी ना कशाफ। तो बहरहाल ये आयमाए तफासिर में से हैं। तो सूरत फातिहा की तफसीर आपको पता है इनकी कितनी है, 200 सफ़ों की है। तो उसी में सूरत अल फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की तफसीर में ये वाक्य लिखते हैं। कहते हैं कि मैंने एक बुजुर्ग से खुद वाक्य सुना, वो बगदाद में रहते थे। एक दिन कहते हैं कि शाम को सैर के लिए निकला दरियाए दजला के किनारे, चलने लगा तो मेरे आगे आगे एक बिच्छू जा रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि ये बिच्छू भी अल्लाह की मखलूक है, और जाहिर है कि अल्लाह ने इसको किसी हिकमत और मसलहत के तहत ही पैदा किया। अब इस वक्त पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मंजिल क्या है, क्या करेगा। कहने लगे कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे पास तो वक्त है, मैं सैर के लिए निकला हूँ, चलो आज जरा मैं इस बिच्छू का ताकुब करता हूँ कि जाता कहाँ है। खैर, बिच्छू आगे चलता गया, ये पीछे चलते गए, दरिया की तरफ रुख हुआ, किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। कहते मैं भी उसके पीछे खड़ा हो गया। थोड़ी देर पर मैंने देखा कि दरिया में एक कछुआ तैरता हुआ आ रहा है, टॉटल। तो कछुआ आकर किनारे लग गया, ये बिच्छू छलांग लगाकर इसकी पुश्त पर सवार हो गया, और गोया कि अल्लाह ने उसके लिए एक कश्ती सी बना दी जिस पे बैठकर ये चला गया। खैर, वो इस कछुए की पीठ पर सवार थे, और वो जब वहां से जाता गया, कहते कि मैंने चूंकि तय कर लिया था कि आज मैं देखूंगा कि बिच्छू जाता कहाँ है, तो मैंने भी कश्ती किराए पे ली और इसी के पीछे पीछे रवाना हुआ। कछुए ने दरिया पार किया, इसी तरह दूसरे किनारे पर जाकर खड़ा हो गया, वो बिच्छू छलांग लगाकर उतर गया। अब बिच्छू आगे चला गया, मैंने फिर इसका ताकुब करना शुरू कर दिया। देखिए, इसको कहते हैं गौर व फिक्र, कायनात में गौर करना। हम तो ऐसे वक्त में भी कहते हाय भूख लगी, खाना क्या है। खैर, कहते आगे चलकर मैंने देखा एक आदमी एक दरख्त के नीचे सो रहा है। मेरे दिल में ख्याल आया शायद ये बिच्छू इस आदमी को काटने जा रहा है। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से इस आदमी को बेदार कर दूं ताकि वो शख्स इस बिच्छू से बच जाए। लेकिन जब मैं इस आदमी के करीब गया तो मैंने देखा कि एक जहरीला सांप अपना फन उठाए इस आदमी के सर पर खड़ा है, और करीब है कि वो सांप इसको डस ले। इतने में ये बिच्छू तेजी के साथ सांप के ऊपर सवार हो गया और इसको ऐसा डंक मारा कि वो सांप बल खाकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। फिर वो बिच्छू वहां से किसी और मंजिल पर रवाना हो गया। अचानक इस वक्त इस सोने वाले शख्स की आंख खुल गई और इसने देखा कि करीब से एक बिच्छू जा रहा है। इसने फौरन एक पत्थर उठाया और इस बिच्छू को मारने के लिए दौड़ा। मैं करीब ही खड़ा हुआ ये मंजर देख रहा था, इसलिए मैंने फौरन इसका हाथ पकड़ लिया और इससे कहा, तुम जिस बिच्छू को मारने जा रहे हो ये तुम्हारा मोहसिन है, इसने तुम्हारी जान बचाई है। हकीकत में ये सांप जो यहाँ मरा हुआ पड़ा तुम पर हमला करने वाला था, और करीब था कि डंक मारकर तुम्हें मौत के घाट उतार देता। लेकिन अल्लाह ने बहुत दूर से इस बिच्छू को तुम्हारी जान बचाने के लिए भेजा, और तुम अब इसी बिच्छू को मारना चाहते हो। ये बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने उस रोज़ अल्लाह की रबूबियत का ये करिश्मा देखा कि किस तरह अल्लाह ताला इस बिच्छू को दरिया के दूसरे किनारे से इस शख्स की जान बचाने के लिए यहाँ ले आए हैं। तो बहरहाल, दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसके पैदा करने में अल हकीम की कोई हिकमत और उसकी कोई मसलियत ना हो। अल्लाह सुबहान तआला ने इस कायनात को बनाया ही ऐसे। अल्लाह ताला ने, अल हकीम ने जो किया इसमें खैर ही होगी जी। ये अल्लाह के काम है, वो कैसे चीज़ों को देखता है। अल्लाह ताला कोई काम दलील के बगैर नहीं करता, खैर और हिकमत के साथ करता है, सलीके और तरीके के साथ करता है। जैसे मशीन का एक छोटा सा पुर्जा इधर से उधर हो जाए ना तो बात नहीं बदलती, इसी तरह अल्लाह सुबहान तआला की बात भी है। इसी तरह के एक वाक्य आपने सुना भी होगा ना कि एक मरतबा एक बादशाह का एक वजीर था, उसको कहते हैं तकदीर पे शाकिर, शाकिरे तकदीर। हर बुरे भले वाक्य पर कहता था अल्लाह ने जो किया उसमें खैर ही होगी। एक मरतबा बादशाह की उंगली कट गई तो वजीर ने उस पर आदत कहा अल्लाह ने जो किया उसमें खैर होगी। बादशाह को वजीर के इस जुमले से बड़ा गुस्सा आया, रंज हुआ, कहेंगे एक तो मेरी उंगली कट गई, दूसरा तुमने कह दिया खैर होगी। वजीर को कैद खाने में डाल दिया। वजीर ने इस हुक्म को जब सुना तो फिर कहा चलो भी कोई बात नहीं, डाल दो जेल में, इसी में खैर होगी। दूसरे रोज बादशाह शिकार के लिए गया और इसी दौरान अपने साथियों से बिछड़ गया। रास्ता चूंकि मालूम नहीं था, अब क्या करता, एक जगह बैठ गया, करे क्या। इधर एक दरख्त के नीचे बैठा, एक शेर आया, बादशाह पे हमला बर हुआ। तो शेर से बचने का आपको तो एक ही रास्ता है, कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हो तो दम खींच ले, मुर्दा बन जाए, क्योंकि मुर्दा इंसान को शेर नहीं खाता, बहादुर होता है ना जिंदा को खाता है। तो बादशाह ने सांस रोकी और मुर्दा सा बन गया, और शेर ने जब उसकी जख्मी उंगली देखी, उसको सूंघा, उसको लगा कि ये तो मर चुका है, किसी और जानवर ने जब मुंह लगा लिया हो ना तो आपको तो शेर नहीं इसको खाता। तो शेर ने छोड़ दिया कि इसकी उंगली पे कोई और जानवर खा गया और ये मर गया, और इसको नहीं खाया। बहरहाल, इतनी देर में बादशाह के जो साथी थे वो भी आ गए और बादशाह को मिल गए, सलाम हुआ, शुक्र किया, सजदे किए। अब उनको लगा कि मेरे बादशाह की जान बच गई, अल्लाह की रहमत की। वापस आकर बादशाह ने वजीर को बुलाया और इनामात दे दिए, कल ले लो। क्या कहा कि अगर कल मेरी उंगली ना कटती तो आज वो शेर मुझे हरगिज़ ना छोड़ता, तो उंगली का कट जाना वाकई बहुत अच्छा हुआ। वजीर से कहा तुमने कैद खाने को जाते वक्त भी तो जो कहा था कि अल्लाह की खैर ही होती है, तो इसमें क्या खैर थी। तो वजीर ने कहा कि लाजमी तौर पर अगर मैं ठीक होता और आप मुझसे नाराज ना होते तो आपके साथ जाता मैं, तो शेर आपको छोड़कर मुझे खा जाता। तो ये है कि कुदरत का कोई फेल, अल हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं है। ये आपके मेरे लिए बहुत बड़ा सबक है। और फिर याद रखिए, अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिकमत अता फरमाता है, ये उसकी शान है। जिसको हिकमत देता है वह मैं यूतल हिकमत है फ़कदूत या खैरन कसीरा, खैर कसीर मिलती है, मांगे अल्लाह से इस वक्त भी। और याद रखिए, दिलों की जिंदगी हिकमत के नूर से है। आज भी दुनिया में सिर्फ वही खुश हैं जो के दिल के नूर के साथ जी रहे। इमाम मालिक रहमहुल्ला ने जिक्र किया, उनको ये बात पता चली कि हकीम लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत किया। कुरान सूरत लुकमान खोल लीजिए तो उसमें भी आता ना कि अल्लाह ने लुकमान को हिकमत दी थी, तो उसी हिकमत की एक दलील। कहने लगे लुकमान अपने बेटे को, ऐ बेटे, उलमा की सोहबत इख्तियार करो और इनके सामने जानवे तलमस तह करो, यानी स्टूडेंट बन के बैठो, बी हम्बल स्टूडेंट, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों को हिकमत के नूर से इस तरह जिंदगी अता करता है जैसे मुर्दा जमीन को आसमान की मूसलाधार बारिश से जिंदा करता है। क्या पता चला, सूरह कहफ में आप पढ़ते हैं ना कि उन लोगों के साथ बैठो जो सुबह शाम रब को पुकारते हैं। तो याद रखिए कि हिकमत वालों के पास बैठने से भी दिल जिंदा होते हैं और हिकमतें मिल जाती हैं। अब हम क्या करें, रुश्तो हिदायत के हसूल की दुआ कीजिए जी। दुआएं मांगिए, आप भी हिकमत मांगेंगे, मैं भी मांगूंगी। कैसे, हदीस में अल्लाह के नबी ने इमरान बिन हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा से फरमाया, ए हुसैन, अगर तू ईमान ले आया तो मैं तुझे दो ऐसे कलेमात सिखाऊंगा जो तुझे नफा देते रहेंगे। जब हुसैन रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम ले आए तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मुझे वो कलेमात सिखा दीजिए। तो आपने फरमाया, पढ़ो, ए अल्लाह मेरे मुकद्दर की भलाई मेरे दिल में डाल दे और मुझको मेरे नफ्स की बदी से बचा ले। तो क्या पता चला, अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वाइज़नी मिन शर्री नफ्सी। शायद कभी कमी हुआ हो कि कोई मामला सामने हो और ये दुआ मुंह पे ना आ जाए, اللهم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی. یہ اس کو چھوٹا استخارہ بھی کہتے ہیں. پورا پروٹوکول کے ساتھ استخارہ نہ بھی کر سکے اور فوری کوئکلی کوئی جواب دینا ہو, کوئی بات کرنی ہو, تو پڑھ لیں کہ اللہ مجھے الہام کر دے رشد. اور رشد کیا ہے؟ وہی ہے جس کو آپ انجوائے کرتے ہیں. اور پھر مجھے اپنے نفس کے شر سے بچا, کیونکہ سب سے بڑا ہمارا دشمن ہمارا نفس ہی ہے. اسی طرح سے الحکیم سے متعلق دعائیں اور اذکار اگر دیکھ لیں ہم, تو ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین, یہی دعا آپ کو بتانے کے لیے بے چین تھی. حضرت ابراہیم کی مانگی ہوئی یہ دعا, اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. اور اسی میں اور بہت ساری خوبصورت دعائیں بھی ہیں نا آگے بھی جا کر. وجل لسان صدقن فی الآخرین, میرے پیچھے میرا ذکر خیر رکھ دینا, یہ بہت مانگا کریں. پھر اسی طرح اس نام کو پڑھنے کے بعد جو معجزت الحسن آپ کے میرے پاس ہے, پہلی بات کہ یہ جانیے کہ حکمت کیسے حاصل ہوتی ہے. حکمت حاصل ہوتی ہے قرآن پاک کے فہم کو حاصل کر کے, سنت کو اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنا کے, دانا اور علماء کی صحبت اختیار کر کے, اور اللہ کا خوف پیدا کر کے. ایک قول آتا ہے راس الحکمت مخافت اللہ, اللہ کا خوف حکمت کا سر ہے. پھر اس طرح بندے کو چاہیے کہ ہر حال اور ہر کام میں یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اسی میں ہوگی, تو انشاءاللہ ایسے شخص کو حقیقی امن اور سکون نصیب ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام الحکیم ہے, اس کے ہر کام میں چونکہ حکمت ہے, تو کبھی بھی زندگی میں کوئی معاملہ آئے تو یہ کہہ دیا کریں کہ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. اسی طرح بندے کو چاہیے کہ اس میں مبارک کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہر حال میں سوچے کہ جو اللہ نے کیا اس میں خیر ہے, زبان سے بھی اسی جملے کو دوہرائے, ہمیشہ کہا کرے میرے مالک تیرے ہر فیصلے پہ میں راضی ہوں, تو میرے سے راضی ہو جانا. پھر اسی طرح الحکیم جل جلالہ کی حکمتوں کو سوچیں. چرند پرند درخت پھل پھول ہر چیز پہ غور و فکر کیجئے, اپنے وجود کے معاملات پہ غور و فکر کیجئے کہ اللہ نے حکمتوں کے ساتھ کیسے ہر چیز کو پرو دیا, اور ایسا نظام جو کسی اور کی طاقت میں نہیں اللہ نے اس کو آپ کے میرے لیے کیسے سہولت سے آگے کر دیا. پھر اسی طرح اگر دعا کی قبولیت کے فوری اسباب نظر نہ آئیں تو مایوس نہ ہو, کیونکہ اس کی دیری میں بھی حکمت ہے. ہو سکتا ہے کہ اس دعا کے بدلے کوئی بڑی مصیبت جو آنے والی تھی وہ ٹال دی ہو, یا آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دی ہو. اسی طرح اس اسم مبارک سے جتنا آپ کا تعلق بڑھتا جائے گا, اتنا ہر حال میں ہر پریشانی میں ہماری زبان پر یہ جملہ ہوگا. آج دہرا کر اٹھیے گا یہ جملہ, اللہ تعالیٰ نے جو کیا اس میں کوئی حکمت ضرور ہے. اے رب جو آکھے سچ آکھے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی معاملہ ایسا نہیں فرماتے کہ جس میں کوئی حکمت نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے تعلق کی خوبصورت سی چاشنی عطا فرمائے, اور کبھی آپ کو حکمت سمجھ نہ آئے تو صاحب حکمت لوگوں سے مشورے بھی کر لیا کریں, ان کے زندگی کے حالات کو دیکھیے, حدیث سے تعلق جوڑ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کو حکمت دے گی. میں نے تو جو بھی سیکھا قرآن پڑھنے کے بعد وہ حدیث اور سیرت سے سیکھا, اور اس کے اسباب پھر دنیا میں آپ کو بہترین استادوں کی صورت میں ملتے ہیں. زندگی کے حالات واقعات سکھاتے ہیں, لوگوں سے سیکھا, ان کے معاملوں سے, ان کے رویوں سے سیکھا, کون کیسے کیا کچھ کرتا ہے. تو جو مالک ایک آنکھ ناک منہ پلکیں ہڈیاں سب کو جوڑ جاڑ کر اتنا خوبصورت انسان بنا دے, تو اس کے باقی کاموں میں حکمتیں کیوں نہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو مجھے بہترین حکمت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.